दिन भर तारीख 3 नवंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर जासूस होने के आरोप लगाए। भारत ने कहा मनगढ़ंत और निराधार।
वी कंप्लीटली रिजेक्ट द बेसलेस एंड अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट सर्टेन ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद।
पूर्व भारतीय सैनिक की कथित आत्महत्या के मामले में राजनीतिक दलों के बीच मचा घमासान। सूचना क्रांति के दौर में बदल रहे हैं गांव भी, पर औरतों की इज्जत से जुड़ी पुरानी सोच क्यों नहीं बदलती?
सिर्फ यहां औरत को ही आंका गया कि इज्जत की जो पूरी ठेकेदारी है वो औरत के पास है, चरित्र जो है वो औरत का ही है, मर्द का तो पूरा सर्टिफिकेट है, उसके कोई चरित्र को नहीं पूछेगा।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के जासूस होने का आरोप लगाया है। एक बयान में कहा गया है कि भारत के कई राजदूत और अधिकारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान में कूटनीतिक कामकाज के नाम पर चरमपंथ और तबाही मचाने के काम में लगे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लगाए आरोप गलत हैं और पाकिस्तान भारत के राजनयिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पाकिस्तान के कराची में एक रेल दुर्घटना में करीब 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार हादसा गलत सिग्नल मिलने के बाद दो ट्रेनों के टकराने से हुआ। बचावकर्मी मलबे में फंसे यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन रेलगाड़ियों में लगभग 1000 लोग फंसे हो सकते हैं। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा
7:18 पे एक धमाका हुआ, हम तो हिल के रह गए कि पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हुआ, पूरा इलाका हमारा हिल गया। जैसे हमने बाहर देखा तो ये जकरिया एक्सप्रेस आके जो के दूसरी जो गाड़ी है इन दोनों के आपस में तसादुम हुआ। तो उस वक्त हमारे मतलब यहाँ पे कोई ऐसे इंतजामियात कोई बंदा नहीं था, सिर्फ ये मोहल्ले वालों ने मदद की हमारे साथ, पूरा मोहल्ला निकला, इन्होंने लाशों को निकाला, बच्चों को निकाला, जख्मियों को निकाला। फिर हमने एम्बुलेंस रेस्क्यू को हमने इतला दी, पुलिस को हमने आगाह किया, रेंजर्स को हमने आगाह किया।
ये थे दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पहले ब्रिटेन सरकार को इस मसले पर संसद में मतदान कराना होगा। इस निर्णय के अनुसार ब्रिटिश संसद को इस मामले पर मतदान करना होगा कि वो ईयू से अलग होने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है या नहीं। अब सरकार लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को अपने स्वनिर्णय के आधार पर लागू नहीं कर सकती। अनुच्छेद 50 के जरिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होनी है। अब सरकार ईयू से औपचारिक बातचीत तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक ब्रिटेन की संसद में इस मसले पर मतदान ना हो जाए। अफगान अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी शहर कुंदुज के पास तालिबानी चरमपंथियों और सुरक्षा सेना के बीच हुई मुठभेड़ में 30 नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि अफगानी सेना ने जब स्थानीय तालिबान कमांडरों को पकड़ने का अभियान चलाया तब ये लड़ाई शुरू हुई। इससे पहले अफगानिस्तान में मौजूद नाटो मिशन का कहना है कि 4 अफगानी सैनिकों के अलावा अफगान सेना का सहयोग करने के दौरान 2 अमरीकी सैनिक भी मारे गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के जासूस होने के आरोप लगाए हैं। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन 8 लोगों के नाम जारी किए। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इनमें से 6 लोग रॉ के एजेंट हैं जबकि 2 आईबी के लिए काम करते हैं। बयान में कहा गया है कि सुरजीत सिंह नाम के जिस राजदूत को अवांछित घोषित किया गया वो फर्जी पहचान पत्र के साथ आईबी अधिकारी बलबीर सिंह के अधीन काम करते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये लोग कराची, सिंध, बलूचिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। उधर भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
वेल लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट वी कंप्लीटली रिजेक्ट द बेसलेस
विकास स्वरूप कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद में तैनात भारतीय उच्चायोग के कुछ राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए पाकिस्तान के पूरी तरह से बेबुनियाद और आधारहीन आरोपों को नकारते हैं। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। खासतौर से ये इसलिए भी अफसोसजनक है क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ये आरोप लगाने के लिए ऐसे वक्त को चुना है जब उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात अपने 6 राजनयिकों को खुद ही वापस बुला लिया था। इन लोगों में से कुछ का नाम पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर भारतीय अधिकारियों को बता सकते थे, जिन्हें पिछले हफ्ते ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो ये अधिकारी आखिरकार कब तक भारत लौटेंगे? इस सवाल के जवाब में विकास स्वरूप बोले,
जो भी भारत सरकार का फैसला लेगी वो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही लेंगे, तो ये एक प्रोसीजरल इशू है और इस पे हम जल्दी ही निर्णय लेंगे।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप। विश्लेषण के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता हारून रशीद से और पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा आरोप प्रत्यारोप अब राजनयिक स्तर यानी कि कूटनीतिक स्तर पर पहुंच गया है, ये लड़ाई कहां तक यानी कि किस स्तर तक जाएगी?
जब से उड़ी का वाकया हुआ है तो उसके बाद से तो लगता यही है कि दोनों देशों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो एक स्लोप है जिस पर नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये तो अभी ताज़ा हुआ है एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को जासूस और उस तरह का इल्ज़ाम लगाना, लेकिन इससे पहले एक एक जो डिप्लोमेट है उनको दोनों देश वापस अपने घर भेज चुके हैं। जिस तरह से अब ये एस्केलेट होता, डिप्लोमेटिक जो वॉर है एस्केलेट होती नज़र आ रही है कि जिसमें अब एक एक की नहीं बल्कि 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि एग्रीवेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है दोनों देशों के दरमियान, अगरचे हाई कमिश्नर दोनों के इस्लामाबाद और दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अगर नीचे स्टाफ ही इतनी बड़ी तादाद में अगर चला जाता है तो इससे तो यही लगता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो डिफेक्टो तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बातचीत जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी।
जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है और पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के जो राजनयिक रिश्ते हैं वो खतरे में हैं?
बिल्कुल, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इस तरह की स्थिति हमने देखी है दोनों देशों के दरमियान। ताल्लुकात माजी में भी खराब हुए हैं और काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर क्लैशेस भी होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं अब भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से ये जो अब ओपनली एक दूसरे के डिप्लोमेट्स और स्टाफ को जासूस करार देना और तकरीबन कहा तो नहीं, लेकिन लगता यही है कि अगला स्टेप यही होगा कि अब इनको वापस बुलाए भारत भी और पाकिस्तान भी, तो इससे तो यही लगता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो भी फ्रीज की तरफ बढ़ रही है, यानी बिल्कुल मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी।
दोनों देशों की जो सीमा रेखा है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पर लगातार बमबारी हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके जो नागरिक इलाके हैं वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, और दोनों ही देश एक दूसरे का खंडन भी करते हैं कि वो नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ कर देखें
काफी तशवीश और चिंता की बात है, और पाकिस्तान में भी इस पर चिंता जरूर की जा रही है। अगरचे पाकिस्तान में और मुद्दे ऐसे हैं जो जैसे क्वेटा में अटैक हुआ, आज ट्रेन का कराची में वाकया हो गया, तो मीडिया उतनी अटेंशन और इसको इतनी तवज्जो तो नहीं दे रहा जितनी शायद होनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में ये क्राइसिस चल रहा है और जब तक मीडिया शायद अगर लाइमलाइट में इसको लाएगा तो तभी कुछ प्रेशर सरकारों पर बन पाएगा और वो कोई स्थिति को बेहतर करने की तरफ कोशिश करेंगे। तो लगता यही है कि ये बैकग्राउंड में स्थिति काफी मजीद खराब हो सकती है, जिसको फिर वापस करने के लिए शायद दोनों देशों को कई वर्ष और लगाने पड़ेंगे।
पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर जासूस होने के आरोप लगाए। भारत ने कहा कि मनगढ़ंत और निराधार। विश्लेषण कर रहे थे पाकिस्तान से बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। कल भारतीय सेना के एक पूर्व सूबेदार की कथित आत्महत्या के मामले में अब राजनीतिक रंग चरम पर है। आज हरियाणा के भिवानी में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजनेताओं में होड़ लगी रही और दूसरी ओर केंद्र सरकार मामले में सफाई देती रही। पूरे मामले पर दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की कथित आत्महत्या को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। शायद इसी के चलते दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर भिवानी में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शरीक हुए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी थे, जिनमें कमलनाथ, कुमारी शैलजा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र भी शामिल हुए। चर्चा इस पर गर्म रही कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सूबेदार रामकिशन ने आत्महत्या कथित तौर पर वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी की सहूलियत न मिलने के कारण की या फिर इसके पीछे कारण कोई और था। भारतीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के इस बयान पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये घटना दुखद है लेकिन मामले की जांच भी होनी चाहिए। वीके सिंह,
वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस के टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक, उनके निधन पर दुख है, लेकिन जो समस्याएं उनकी निकल कर आ रही है वो वन रैंक वन पेंशन से ताल्लुक नहीं रखती।
जैसे ही सत्ताधारी भाजपा सरकार से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी पार्टियों के तेवर और तीखे हो गए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को सुनिए।
कि अगर उस इसका नाम है रामकिशन, जो शहीद भगत सिंह की परिपाटी पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको शहीद कहना चाहिए, और ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति जो कहता है कि उसके मानसिक संतुलन के बारे में सोचना चाहिए, वो किसी पार्टी की टिकट से सरपंच लड़ा था तो शर्म आनी चाहिए।
इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भिवानी में रामकृष्ण ग्रेवाल के गांव बामला पहुंचे। केजरीवाल के साथ आप पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भी थे। परिवार वालों से मिलने के बाद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा भी की। इससे पहले हरियाणा की भाजपा सरकार की ओर से कहा गया था कि पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद का आश्वासन दिया गया है। साथ ही सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। लेकिन पत्रकारों ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से रामकिशन के अंतिम संस्कार में शामिल न होने की बात पूछी तो मुख्यमंत्री का जवाब था,
मैंने बताया ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ से छोड़ करके जाने का नहीं, हमारा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भेजे हैं, हमने चले गए हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय सांसद धर्मवीर जी वहाँ हैं, रतन कटारिया जो हमारे यहाँ के अम्बाला के माननीय सांसद हैं वो भी वहाँ गए हैं।
कल दिल्ली में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के बाद आज फोकस हरियाणा में रहा, लेकिन इस पूरे प्रकरण से विपक्ष को भाजपा सरकार की आलोचना का एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल चुका है। अब गेंद भाजपा सरकार के पाले में दिख रही है और आगे आने वाले 1-2 दिन इसलिए अहम होंगे क्योंकि उनसे राजनीति का रुख पता लगेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
और आपको बता दें कि इस समय जब इस कार्यक्रम का आप सीधा प्रसारण सुन रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को जंतर मंतर से इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति तक कैंडल मार्च निकालने से दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। और अभी अभी ये सूचना आ रही है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, दूसरे दिन लगातार फिर से इसी मुद्दे पर। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि राहुल गांधी को बिना वजह गिरफ्तार किया गया है।
राहुल गांधी जी जो सैनिकों के लिए न्याय की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसको दबाना चाहती है। कल 2 बार राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, सैनिकों के परिवारों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, आज फिर एक शांतिप्रिय कैंडल मार्च निकालते हुए, संवेदनशील कैंडल मार्च निकालते हुए श्री राहुल गांधी और सैकड़ों हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले जबरन जबरदस्ती रूट बदला गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मोदी जी, सत्ता के सिंहासन से उतरिए वरना 125 करोड़ जनता आपकी चूल्हे हिलाकर रख देगी।
रामकृष्ण ग्रेवाल की खुदकुशी के मामले पर राहुल गांधी को दूसरे दिन फिर से हिरासत में लिया गया। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के विकास रथ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। खास खास बात ये रही कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी यहां पर मौजूद थे और अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किए, हम थोड़ा डगमगाए जरूर, लेकिन अब हमें बहुमत की सरकार बनानी है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र अखिलेश यादव की रथ यात्रा में शामिल है, सीधे कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं। समीर, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ पर हैं और रथ यात्रा कहाँ तक पहुँच गई है और चल क्या रहा है वहाँ पर?
जी मोहनलाल जी, आपको बताना चाहूंगा, इस समय मैं उन्नाव में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उन्नाव के शुक्लागंज में एक सभा के जरिए इनकी रथ यात्रा का जो पहला चरण है वो संपन्न हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने भाषण दिया, उनके साथ कई मंत्री थे और सारी चीजें थी। ये सभा लगभग 9-10 घंटे की जो यात्रा थी, सुबह 10 बजे से 9 बजे से शुरू हुई थी, वो उन्नाव में आकर के खत्म हुई। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो जो ये कयास लग रहे थे कि मुलायम सिंह हरी झंडी दिखाएंगे या नहीं, शिवपाल सिंह यादव यहाँ पहुंचेंगे या नहीं, तो ये चीजें दोनों ही हुई। हालांकि शिवपाल यादव जब मंच पे बैठे हुए थे तो बहुत अनबने से वो दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने मन से नहीं बैठे हैं, किसी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, बैठा दिया गया है। और यही नहीं, वहां पे कुछ ऐसे नारे भी लगे जिनको सुन करके शिवपाल यादव सहज नहीं थे। और भाषण में अपने उन्होंने कहा भी, साफ तौर पे कह दिया कि जोश में होश मत खोए युवा कार्यकर्ता। दरअसल तो बात यह थी कि शिवपाल यादव को ऐसे युवा कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे युवा नेताओं के साथ बैठना पड़ा जिनको अभी पिछले जो महीने डेढ़ महीने से इनके यहाँ पूरा विवाद चल रहा था, इन सारे नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी से निष्कासित किया, जिनमें कई विधायक थे।
तो बड़ी विरोधाभास की बड़ी विरोधाभास की स्थिति थी। ये बताइए कि आप इतनी जगह पर आपने इस रथ यात्रा को देखा, कितना जन समर्थन या किस तरह की यात्रा रही ये पहले दिन की?
मोहनलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन समर्थन की अगर बात की जाए तो लखनऊ के लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया होगा, और पूरा जो मुख्यमंत्री के घर की ओर या ये जहाँ कार्यक्रम ये शुरू हुआ था वहां से जाने वाले सारे रास्ते बंद थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पोस्टर बैनर, उनकी गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। और लगभग ये सिलसिला, चूंकि यात्रा के साथ हम भी चल रहे थे और भी बहुत से पत्रकार थे, ये सिलसिला पूरा उन्नाव शुक्लागंज तक जारी रहा। और एक दिलचस्प बात ये भी रही कि जैसे ही ये मुख्यमंत्री अपने रथ पर सवार होकर के निकले हैं और मुश्किल से आधा किलोमीटर ही आए होंगे, तभी ये पता चला कि रथ में खराबी आ गई है। लगभग एक
हाईटेक रथ जो है रुक गया,
कई करोड़ रुपए लगा करके इसकी साज सज्जा पर, और मर्सिडीज बेंज जो बहुत ही नामी कंपनी है उस कंपनी का ये रथ था, अचानक इसमें क्या खराबी आ गई, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं रही। और आखिर में मुख्यमंत्री जब उन्नाव में बोल रहे थे तो उनको खुद ये कहना पड़ा कि मैं निकला तो रथ लेकर के था लेकिन रथ से आपके यहाँ नहीं आ पाया, मैं आया हूँ अपनी गाड़ी से,
निकला था गड्डी लेके लेकिन आ गया कार पे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र, अखिलेश यादव की रथ यात्रा में क्या कुछ घटा इसकी जानकारी देने के लिए। रुक उत्तर प्रदेश का हमने किया है तो उत्तर प्रदेश की ही चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाली 40 साल की औरत तब आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई जब उसके बलात्कार का वीडियो सोशल नेटवर्क साइट पर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। औरत का बलात्कार उसके लिए उसे ही शर्मिंदा किए जाने की मात्र एक घटना नहीं है। पिछले सालों में मोबाइल फोन और चैट ऐप्स देश में सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों तक पहुंच गए हैं, पर वहां औरतों और उनकी इज्जत से जुड़ी पुरानी सोच नहीं बदली है। इसी द्वंद को समझने के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्य आर्य मुजफ्फरनगर में उस आशा वर्कर के गाँव गई और उन्होंने वहां से ये विशेष रिपोर्ट हमें भेजी है।
मुजफ्फरनगर शहर से करीब 2 घंटे का सड़क रास्ता तय कर मैं पहुंची आशा वर्कर, जिनकी पहचान छुपाने के लिए मैं उन्हें गीता के नाम से बुलाऊंगी, के गांव में। मैंने पता पूछा तो गांव वाले बिना दरवाजे या शौचालय के एक छोटे से घर की तरफ ले गए। करीब दर्जन भर लोग जुट गए और गीता के पति के साथ बैठे 12-14 साल के उनके तीनों बच्चे। गीता के पति, जिनके मुँह से शराब की दुर्गंध आ रही थी और जिनके घर की छत पर मैंने करीब 200 शराब की खाली बोतलें देखी थी, उनके हाव भाव में कोई उत्तेजना नहीं थी।
तब मेरे से तो बताया नहीं, कहने लगा तेरे इसकी घरवाले की वीडियो बन गई।
छूटते ही बोले कि उनकी पत्नी ने ना बलात्कार और ना ही उसके वीडियो के बारे में उन्हें कुछ बताया था।
कहीं भी जानने देते, फिर तो पूछ दे।
अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं भी पूछता कि ये सब उसकी मर्जी से हुआ था कि नहीं, और फिर गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बात कर हम ये तय करते कि क्या कदम उठाना चाहिए।
अपने पति से ना सही गीता ने गांव के डॉक्टर और पूर्व सरपंच से बात की थी। उन दोनों ने मुझसे माइक पर बात करने से तो मना कर दिया, पर माना कि गीता का वीडियो उन्होंने भी देखा था, और फिर ये आश्वासन दिया कि गीता ने जैसे ही उन्हें बताया कि उसके बलात्कार का वीडियो बनाया गया है, उन्होंने मदद की पेशकश की और उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। तो फिर गीता ने आत्महत्या क्यों की? सरसों के पीले पौधों और गन्ने की ऊंची फसल के बीच बसा है छपरा गांव। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमसे बात करने के लिए सभी राजी थे, आशा वर्कर के पति, बच्चे, पड़ोसी, सभी ने हमें अपने नज़रिए से अपनी बात बताई। लेकिन उन सबकी बातें हमें सच के कितने करीब लेके गईं, ये सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, और इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैं कोशिश करूँगी उसे मिलने की जो उस आशा वर्कर की सबसे करीबी थी, उसके साथ काम करने वाली एक और आशा वर्कर। बहुत मुश्किल से स्थानीय आशा वर्कर्स की मदद लेकर आखिर मैं गीता की सहेली से मिलने में कामयाब हुई। डरी सहमी उस औरत ने गांव में बुनी गई झूठ की परतें खोली और साहसी गीता की पूरी आपबीती शुरू से बताई।
उसने ये कहा था जी, मेरे पीछे जब से
कुछ महीने पहले पास के गांव का एक नौजवान लड़का गीता का पीछा करने लगा। उसने उसे पहली बार तब देखा था जब वो उसकी गर्भवती भाभी के चेकअप के लिए आती थी। जब गीता ने उसे मना किया वो उसे धमकी देने लगा, कहता था तुम अकेले मिल गई तो छोड़ूंगा नहीं।
गीता की सहेली के मुताबिक गीता उस गांव में जाने से डरने लगी और हमेशा उसे साथ लेकर जाती। जब वो गीता को कहती कि इस बारे में अपने पति को बता दो तो गीता मना कर देती, कहती सब मुझ में ही गलती निकालेंगे।
टीकाकरण हो रहा था उस दिन।
एक दिन जब हम बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के लिए मिले तब गीता ने मुझे बताया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस नौजवान और उसके तीन दोस्तों ने उसका पीछा कर जबरदस्ती कर उसके कपड़े फाड़ दिए। उस वक्त वो परेशान तो थी पर अपनी जान लेने की नहीं सोच रही थी, बल्कि कह रही थी कि उनकी शिकायत करेगी, उनके नाम मालूम कर गिरफ्तार करवाएगी।
पर इससे पहले कि गीता पुलिस में जाने की हिम्मत जुटा पाती उसके बलात्कार का वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा जाने लगा। शायद ये शर्मिंदगी का ही एहसास था कि गीता ने ये बात अपनी सहेली से आखिर तक छुपाई और फिर एक दिन फोन किया।
उसने फोन करा जैसे
उसने मुझे फोन किया और कहा कि सब पड़ोसी जानते हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी वो गांव के डॉक्टर के पास गई और बताया कैसे उस लड़के ने उसका पीछा किया और उसने उसे दुत्कारा, पर डॉक्टर बोले घर जाओ और चुप रहो, सब तुम्हारी ही गलती है। वो गांव के पूर्व प्रधान के पास भी गई पर उसने भी यही कहा, ये तुम्हारी गलती है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं।
शायद वही आखिरी धक्का हो। अगली दोपहर गीता गांव के बाहर एक सड़क पर मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। पोस्टमार्टम में पाया गया कि मौत जहर खाने से हुई। सामूहिक बलात्कार का फोन पर वीडियो बनाना और मैसेजिंग सेवाओं के जरिए उसे फैलाने के कई मामले सामने आए हैं, पर गांव के स्तर पर असली परेशानी अपराध कर रहे उन मर्दों से नहीं बल्कि उन औरतों से है जो नई तकनीक का इस्तेमाल घर के पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलने के लिए कर रही हैं। गीता के मामले में स्वायत्त जांच करने वाली स्थानीय समाजसेवी रेहाना अदीब के मुताबिक नई तकनीक का पारंपरिक मूल्यों पर गलत असर पड़ने का ऐसा डर है कि पंचायतों ने कई बार लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने तक पर पाबंदी लगाई है। ये विरोधाभास ही है कि सामूहिक बलात्कार के वीडियो चाहे मर्द बनाए पर नई तकनीक से जुड़ी शंकाओं का निशाना औरतें ही बनाई जाती हैं।
इज्जत के नाम पर सिर्फ यहाँ औरत को ही आंका गया कि इज्जत की जो पूरी ठेकेदारी है वो औरत के पास है, चरित्र जो है वो औरत का ही है, मर्द का तो पूरा सर्टिफिकेट है, उसके कोई चरित्र को नहीं पूछेगा। पूरे गांव की इज्जत और पूरे समाज की, पूरी बिरादरी की, जाति की इज्जत एक औरत से जुड़ती हो, वहाँ औरत कहाँ बचेगी, उसके लिए माहौल कहाँ बचता है।
गीता की मौत के बाद आसपास के गांव से आशा वर्कर्स जुटी और विरोध प्रदर्शन किए, कहा पुलिस जब तक कार्रवाई नहीं करेगी गीता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आखिर पुलिस हरकत में आई। इलाके के SP प्रदीप कुमार ने बताया,
तीन अक्यूज जो हैं अरेस्ट हुए हैं। एक जो मेन अक्यूज था जिसने रेप कमिट किया और क्लिपिंग बनाई थी, इसके अलावा दो और अक्यूज हैं जिन्होंने क्लिपिंग को वायरल किया था, गांव में फैलाया था।
पर गीता के गांव में उसकी मौत पर नाराजगी अब भी उसकी इज्जत के सवाल के नीचे दबी है। कई लोगों के लिए गीता का अपनी जान लेना लाजमी सा था, पर पीछे छूट गए कुछ के लिए उस हादसे से कुछ नहीं बदला। खास तौर पर गीता की बेटी के लिए। वो कहती है, अब भी सब बहुत मुश्किल है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मेरी तरफ कोई तंज कस देता है, कहता है, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उससे तुम शर्मिंदा नहीं हो। दिव्या आर्य, BBC, मुजफ्फरनगर।
ये विशेष रिपोर्ट हम आपको सुबह के प्रसारण में दोबारा सुनवाएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 दिनों बाद मतदान होना है। इस रेस में 2 बड़े उम्मीदवार आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि उन्हें समर्थकों का वोट हासिल हो पाए। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सभी नस्लीय पृष्ठभूमि के डेमोक्रेट समर्थकों से अपील की है कि वे घरों से बाहर निकलें और हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में मतदान करें। साथ ही ओबामा ने चेतावनी दी है कि अमरीकी गणराज्य की किस्मत और दुनिया दांव पर लगी है। ओबामा ने कहा कि रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप मेहनत से हासिल किए गए नागरिक अधिकारों के लिए खतरा हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने अमरीकी मतदाताओं को आगाह किया कि अगर हिलेरी क्लिंटन उनके बाद राष्ट्रपति नहीं चुनी गई तो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के 8 सालों के दौरान जो भी विकास हुआ है वो बेकार चला जाएगा। क्लिंटन के पक्ष में चुनावी अभियान कर रहे राष्ट्रपति ओबामा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर कैरोलिना में एक रैली में भाषण दे रहे थे। ओबामा ने कहा कि अमरीकी लोगों के सामने एक बहुत ही साफ विकल्प मौजूद है।
रिपब्लिकन्स ने ऐसे उम्मीदवार को नामांकित कर दिया है, उनमें से कुछ लोग जानते थे कि उन्हें नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। जिन रिपब्लिकन उम्मीदवारों के खिलाफ वो लड़ रहे थे उनमें से कईयों ने कहा है कि वो एक धोखेबाज हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है और वो इस पद पर बैठने के काबिल नहीं हैं। ये व्यक्ति कमांडर इन चीफ बनने के मिजाज के खिलाफ है और वे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं हैं। ये कोई विवादास्पद दावा नहीं है। ये बहुत अजीब बात है कि समय बीतने के साथ पागलपन की बातें भी सामान्य लगने लगती हैं। उन्होंने सैकड़ों पागलपन की बातें कही हैं जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं गया है।
बराक ओबामा के शब्द। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पेंसकोला में भाषण के दौरान कहा कि ओबामा को हिलेरी क्लिंटन के लिए प्रचार करना बंद करना चाहिए और देश को चलाने पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि मोटे तौर पर कहा जाए तो ओबामा के और 4 साल किसी को नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में क्लिंटन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगले मंगलवार को अमरीकी अपने अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान करेंगे जिसे वो व्हाइट हाउस में बैठे देखना चाहते हैं। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक क्लिंटन और ट्रंप के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। ट्रंप और क्लिंटन ने चुनाव में अहम राज्य फ्लोरिडा में प्रचार के लिए संसाधनों को झोंक दिया है। दोनों प्रत्याशी चुनावी अभियान में न सिर्फ इस राज्य में सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं बल्कि दोनों उम्मीदवार प्रचार पर 6.5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। और अब आपको कार्यक्रम में बता दें कि आज वक्त कम है, इसलिए अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में आपकी राय प्रसारित हम करेंगे, तो सुनना मत भूलिएगा। और कार्यक्रम में बात तब करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में?
जी देखिए, पहले तो गेंदबाजों और उसके बाद अपने बल्लेबाजों के दमदार और शानदार प्रदर्शन के धन पर वेस्ट इंडीज ने शारजाह में खेले गए 3रे टेस्ट मैच में आज पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट के नाबाद 60 और विकेटकीपर शेन डॉरिज के भी नाबाद 60 रन की मदद से 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चला आ रहा जीत का रथ भी रुक गया। इससे पहले पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच के अलावा 3 एकदिवसीय और 3 20-20 यानी लगातार 8 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत चुका था। इस हार के बावजूद पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। उधर मेज़बान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से पर्थ में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ जहां स्टंप के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 105 रन था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उसकी पूरी पारी 242 रनों पर सिमट गई।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के 8 अधिकारियों पर खुफिया एजेंसी रॉ और IB के जासूस होने का आरोप लगाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान के कराची में एक रेल दुर्घटना में करीब 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। ब्रिटेन के हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पहले ब्रिटेन सरकार को इस मसले पर संसद में मतदान कराना होगा। अफगान अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी शहर कुंदुज के पास तालिबानी चरमपंथियों और सुरक्षा सेना के बीच हुई मुठभेड़ में 30 नागरिक मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। عراقی سینا کا کہنا ہے کہ پوروی موصل کے باہر کے علاقوں میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے کئی حملوں کو ناکام کر دیا. یہ علاقہ سینا کے قبضے میں ہے. بی بی سی سماچار.
تو بی بی سی ہندی سیوا کی تیسری سبھا دن بھر کے اس انک میں بس اتنا ہی. آج اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے دیپک جسروٹیا. اگلے کارکرم یعنی کہ گھٹنا چکر کارکرم میں آپ سے ملاقات ہماری طے ہے. تو فی الحال موہن لال شرما کو اپنے سمست سہیوگیوں کے ساتھ ودا دیں. نمسکار.